ओम शांति। रात्रिकालीन सत्र, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र। अब तक आप सुनते आए, लेकिन अब बोलने का, अर्थात अपने मन में जो भी अब तक सुना, जो भाव उत्पन्न हुए, प्रश्न उत्पन्न हुए, आपके क्षेत्र से जुड़े हुए, खेल का क्षेत्र, जीवन का क्षेत्र, यद्यपि गीत ये था जिंदगी का खेल, कैसे खेलें, हंसते हंसते खेलिए। और आप हंसते हंसते ही खेलते हैं जिंदगी के खेल को भी, और वैसे भी खेल को। और हमेशा ही ये तनाव मुक्त रहे, आपकी परफॉर्मेंस 100% रहे, उसके लिए ही आज का ये सुंदर सत्र है। कहते भी हैं एक बहुत ही सुंदर सी बात, प्रेरक सी बात, विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे, स्टोरी सुनाया करते थे कि देवताओं के बीच एक बार चर्चा हुई कि एक बहुत ही अद्भुत सी शक्ति है, उस शक्ति को कहाँ छिपा करके रखा जाए, क्योंकि ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ यदि लग जाए गलत उपयोग हो सकता है। एक देव ने कहा कि इसको हम सागर की गहराई में छुपा के रख देते हैं, एक ने कहा कि नहीं, इसे हम बिल्कुल पहाड़ के ऊंचाई पे छिपा देते हैं, किसी ने कहा नहीं, जंगल में छिपा देते हैं इस अद्भुत शक्ति को, वहां तक इंसान नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक बुजुर्ग देव ने कहा कि नहीं, इंसान इन सभी जगहों पे पहुंच जाएगा, और वास्तव में पहुंच गया है। इसे तो व्यक्ति के मन के अंदर ही छिपा कर रख दो। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर झांकेगा, अपने भीतर झांकेगा, जिसे इस झांकने की आदत होगी, भीतर जाने की आदत होगी, वो इस शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, और वही इस शक्ति के माध्यम से जीवन में सफलता अर्जित करेगा। तो वास्तव में मन की जो शक्ति है, उसकी जागृति कैसे हो, जो हमारी अंदर समाई हुई है, जिसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपके प्रश्न हैं, और उन सभी का सुंदर उत्तर देने के लिए आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे बीच हैं। आप जानते हैं आदरणीय भ्राता जी, हर प्रश्न का, हर समस्या का सुंदर समाधान हम तक पहुंचाते हैं। वो कहते हैं जैसे सूरज की रोशनी जग को रोशन कर देता है, चंदा की चांदनी अंबर को रोशन कर देता है, वैसे ही पढ़ते हैं जहां सूर्य भाई जी के कदम, वहां हर समस्या का निदान हो जाता है, हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। कहते हम सबके भी प्रश्नों का निदान करने के लिए आदरणीय भ्राता जी हमारे बीच हैं। तो भ्राता जी सीधे ही प्रश्नों की ओर आऊं, उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुछ प्रेरणाएं हमारे सभी भाई बहनों को, खिलाड़ियों को प्रदान करें।
ओम शांति। चार्ज तो आप सभी हो ही गए, यहाँ हो गए, बाहर भी ठंडी हवा आ गई, आपके आते ही नहीं तो गर्म हवा थी, और इधर ज्ञान की शीतल बरसात भी आपके ऊपर हो रही है। समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना। अगर मन को पावरफुल बना दिया जाए तो कोई भी समस्या समस्या रहती ही नहीं है। एक बात याद रखेंगे, समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें चैलेंज मानो, चुनौती है, उन्हें हमें पावर करना है। मैं यहीं का उदाहरण दूं, आपके बीच में एक बहन थी, गई है आज मेरे से दो बार मिली, ज्ञान भी उसने लिया। देखो, एक छोटी बात से परेशान थी वो, बहुत मनुष्य परेशान होते हैं। कहा मैंने, जब मैं शिव बाबा के पास आई, ज्ञान लिया, तब तक मेरे पास एक मेडल था केवल, और पिछले 5 साल में मैंने 100 मेडल ले लिए हैं जब से ज्ञान लिया है। फिर मैंने उसको कहा, तुमसे अच्छा कौन हो सकता है दुनिया में जिसके पास 101 मेडल हो? कहा नहीं, पर मेरे परिवार वाले मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सब कुछ अच्छा, मैं उसे मोटिवेट किया, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, परिवार वाले करना चाहिए उन्हें, पर नहीं करते तो उन पे डिपेंड क्यों कर रही हो अपनी खुशी? भूल जाओ कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। दुनिया तो आपको अप्रिशिएट करे कि हाँ मेरा बहुत नाम है, तो देखो एक छोटा सा विचार कि परिवार वाले अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी उमंगों को कम कर रहा है। फिर मैंने उसे कहा, परिवार वाले नहीं करते ये तो तुम जानती हो, पर भगवान तो करता है ऊपर से कि हाँ वो तो बहुत करता है, मदद भी कर रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए किसी भी छोटे विचार के कारण ना अपनी उमंग उत्साह को कम करना है, ना अपनी खुशी को खोना है। ये सभी याद रखेंगे, जितने हम एनर्जेटिक रहेंगे उतनी ही समस्याएं भाग जाएंगी। जिन्होंने आप में से ज्ञान लिया है उनके लिए मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। हम सब भगवान के महावाक्य सुनते हैं, उसमें एक महावाक्य हमने सुना था। मैंने जो ये सब कुछ किया, समाधान आदि के प्रोग्राम 1000 हुए हैं वो लगभग, वो सब ईश्वरीय ज्ञान के आधार से किए हैं, वो कोई सांसारिक ज्ञान के आधार से नहीं। तो उसमें एक बहुत सुंदर संकल्प दिया गया हमें कि जो आत्माएं हम में से, जो मनुष्य सदा इस अवेयरनेस में रहता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विघ्न और समस्याएं उसके पास आ नहीं सकती। मैंने इसको इस तरह डिफाइन किया, जैसे आपके कमरे में मच्छर आ गए हो तो क्या कर देते हैं आजकल, ऑल आउट या कुछ भी जलाते हैं, तो उसकी जो दुर्गंध होगी ना, उससे मच्छर भागने लगते हैं, उनका दम घुटने लगता है। ऐसे ही जब हम इस संकल्प में रहते हैं, इस अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, भगवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हमसे चारों ओर पावरफुल तरंगे फैलने लगती हैं। उससे आने वाली समस्याएं दूर से ही, पहले से ही नष्ट होने लगती हैं। तो बहुत सारे प्रयोग कराए हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस संकल्प से अनेक समस्याएं हल होती हैं। अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और मैं कुछ चीजें, दो चार चीजें जनरल रूप से भी आपको कहूंगा, वो या तो क्वेश्चंस के आंसर में या बाद में।
एक प्रश्न है बेटा जी, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न कि अपने मन की शक्ति को हम कैसे पहचानें, कैसे उसे यूज करें, कैसे उसका विकास हो।
हमारे मन में बहुत सारी शक्तियां हैं ही, अगर हम बोल्ड हैं, अगर हम में साहस है, अगर हम घबराते नहीं हैं, तो हम बहुत पावरफुल हैं। और यदि हम छोटी बातों में निराश होते हैं, निगेटिव होते हैं, हार मान लेते हैं, भय होता है, तो हम कमजोर हैं। अब ये तो हुई पहचान, लेकिन हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। दो तरीके उसके, एक सवेरे उठते ही, मैंने उस दिन भी कहा था आपको, कल शायद था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 7 बार उठते ही याद करेंगे, आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। दूसरा, सर्वशक्तिवान परमात्मा से योग लगाना। मैंने कल उदाहरण दिया था आपको सूरज का, हम सूरज से कुछ मांगते नहीं है, रोशनी हमें दो, गर्मी दो, एनर्जी दो, हम उससे कनेक्ट हैं। हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो उसकी शक्तियां हमें मिलती रहेंगी और हम बहुत शक्तिशाली बनते जाएंगे। बाकी हम सबको ये मानना है, ये सत्य है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम कौन हैं बताओ? नहीं, आत्मा है ना, आत्मा को एटम बम भी जला नहीं सकता, पता है ना, आत्मा को एटम बम की अग्नि भी जला नहीं सकती। जो करोड़ों मनुष्यों को जला के नष्ट कर सकती है, वो आत्मा को नहीं जला सकती। तो हम बहुत पावरफुल हैं।
अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये हर क्षेत्र में जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो अपने खेल के क्षेत्र में हमें प्रतीत होता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़ेगा। सेल्फ रेस्पेक्ट माना स्वमान, इसको हम बोलते हैं यहाँ। और आप एक ही चीज कर लो, जिसको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है 21 दिन तक, केवल 21 डेज, सवेरे उठकर और रात को सोने से पहले 108 टाइम लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे आपके ब्रेन को एनर्जी जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके बीच में ही बैठे हैं एक बहुत बड़े व्यक्ति, जनरल मैनेजर हैं, कल मेरे पास आए थे कुछ समस्या लेकर। मैंने उनको ये अभ्यास कहा था, आज मिलने आए कल जा रहे हैं, चेहरा चमक गया एक ही दिन में, मुझे बहुत खुशी हुई, कॉन्फिडेंस आ गया, मानसिक शक्तियां बढ़ गई। 21 दिन में आप अपने को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट पाएंगे और अनेक मानसिक कमजोरियां जाते हुए दिखाई देंगी आपको।
आप सब ये सुंदर सूत्र अपने पास नोट करके रखते रहें, क्योंकि सचमुच बहुत ही मूल्यवान है। और जैसे हमेशा प्रायः हर सत्र में एक चर्चा हो रही है कि केवल श्रवण ना हो, लेकिन उस पर चिंतन भी हो और आचरण भी हो, तो उसका सुंदर रिजल्ट आप देख पाएंगे। कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन करें जरूर। जब रिजल्ट हमारे सामने आता है, हमारा उत्साह, हमारा विश्वास दोगुना हो जाता है और हम अच्छे से उस कार्य को आगे से आगे कर पाते हैं। दादा जी, खेल के पहले और खेल के समय मन में बहुत अधिक प्रेशर रहता है, ये प्रेशर कई बार हमें अनस्टेबल कर देता है। तो ऐसे में
रहता है, बहुत
प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, तो कई बार अनस्टेबल हो जाते हैं, उसके कारण क्या
किया जाए? वही प्लेयर जो प्रेशर से मुक्त रहेगा गोल्ड मेडल लेगा, याद रखेंगे। प्रेशर नहीं, एंजॉयमेंट। प्रेशर हमारी आंतरिक शक्तियों को वीक कर देता है, आपके हाथ की शक्ति को वीक कर देता है प्रेशर। मान लो बैडमिंटन खेल रहे, आपके हाथ की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए नो प्रेशर, खेल को एंजॉय करना है मुझे, बहुत हल्का रहना है। हार होगी या जीत, तीसरा तो कुछ होगा ही नहीं, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करेंगे। मुझे अपने खेल को एंजॉय करना है, आज नहीं तो कल मुझे मेडल मिलेगा ही, ये संकल्प बार बार करते रहो, बाकी प्रेशराइज नहीं रहना है।
जब हम अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तब हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। वैसी ही नॉर्मल स्थिति हमारी रहे जब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कैसे हो?
देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अपने घर में खेल रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं, अपने कॉलेज में खेल रहे हैं, अपने मैदान में खेल रहे हैं, अपनापन रहता है, हल्के रहते हैं। अप्रिशिएट करने वाले भी 10-20 लोग होंगे जरूर, वहाँ ताली बजाने वाले भी होंगे। जब हम बाहर जाते हैं तो आपको कोई पहचानता नहीं है, आप दूर चले गए हैं। लेकिन अब आप याद रखना, आपको पहचानने वाला कौन है? कौन है? शिव बाबा आपको पहचानता है, वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है। और जो मैंने कहा मास्टर सर्व शक्तिवान लिखेंगे, जब आप अपने होम टाउन से बाहर खेलने जा रहे हैं तो वहां भी सवेरे उठकर लिख न पाओ तो 21 टाइम याद कर लेना उठते ही, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3 मिनट लगेंगे मुश्किल से, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो डर भी निकल जाएगा। वो एक हिचकिचाहट होती है मनुष्य को, वो डर भी होता है, बड़ी नेचुरल सी चीज है। अपने घर में कोई चीज करना और बाहर करना, दोनों में अंतर तो होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप संसार में कहीं भी खेलने जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े उमंग उत्साह से खेलेंगे।
ज्यादातर जो खेल हैं उनमें अग्रेशन या फिर एक अटैक जो करना होता है, उस प्रकार का एक नेचर होना बहुत जरूरी माना जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि क्रोध करना या जो अग्रेशन है वो ठीक नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए जीतने के लिए ये जरूरी होता है। हम अपने माइंड को भी कई बार इसी रूप से प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे इन दोनों के बीच को समझा जाए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है?
नहीं, जो जरूरी है वो तो करना है, बाकी क्रोध नहीं करना है। एग्रेशन होना अलग चीज, एग्रेसिव होना अलग चीज, क्रोध करना अलग चीज। आप देख सकते हैं एक बैट्समैन, अगर उसे क्रोध आ गया वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, क्योंकि क्रोध में विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, कुछ का कुछ करेगा। अब एग्रेसिव तो बॉलर भी है, हमें एंजॉय करना है, एग्रेसिव रहना भी है जहां भी आप हैं, लेकिन क्रोध से बचेंगे। क्रोध संबंधों को बिगाड़ देता है, आप सुनते ही होंगे कभी कभी क्रिकेट खेलने वाले अपशब्द बोल देते हैं दूसरी टीम वालों को, उसमें कितना नुकसान हो जाता है, उनके कैरियर पर बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है। इसलिए क्रोध नहीं, लेकिन एग्रेसिव रहना, पूरे फोर्स से अटैक करना, वो आवश्यक है। दोनों अलग अलग चीज हो गई।
बच्चों को मोबाइल के एडिक्शन से कैसे दूर करें और कैसे उन्हें स्पोर्ट्स की ओर जाने के लिए प्रेरित करें? हो सकता है आजकल बच्चे खेलते नहीं है लेकिन मोबाइल में ही गेम्स खेलते
रहते हैं। अब वो कहेंगे हम तो मोबाइल में ही गेम देख रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, ये कल्चर आ गई है, मोबाइल कल्चर इसको कहते हैं, और माताएं तो अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, वो यहाँ पे खरीद के थोड़ा ही लाते हैं। अब वो माताओं को तंग करते हैं तो उन्हें बिजी करने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं। तो मोबाइल से खेलो। आजकल मुझे नहीं लगता बाजार में खिलौने बिकते होंगे जो पहले बच्चों के लिए बिकते थे, आजकल तो मोबाइल सस्ते से मिल जाते होंगे, वो थमा देती हैं। और आपको पता हो, जितना मोबाइल सस्ता होगा उससे रेडिएशन उतना ही डेंजरस फैलेगा, और बच्चे अगर उसको आंखों के बहुत समीप रखते हैं, ब्रेन पर भी इफेक्ट होता है और आंखों पर भी इफेक्ट होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं, बच्चों को इससे छुड़ाना सहज काम नहीं है। इससे छुड़ाने का एक ही तरीका है, उसको पढ़ाई में लगा देना। और माँ को भी चाहिएगा कि वो भी सारा दिन मोबाइल पे न रहे। माताएं भी ज्यादा रहती हैं तो बच्चियां छीनने लगती हैं माँ से मोबाइल, बहुत देख लिया अब हमें तो दो। खुद भी बचना है तब दूसरों को बचा सकेंगे, लेकिन पढ़ाई का इंटरेस्ट उनमें लगा दो। तो मोबाइल से देना पड़ेगा क्योंकि वो कल्चर हो गई है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ के मोबाइल पे लगे रहें। चाहे वो नाराज भी हों, रूस भी जाएं, लेकिन एक बार स्ट्रिक्टली उन्हें कर देना होगा। कई माताओं ने कर दिया है, मुझे माताएं सिखा बताती हैं कि हमने कर दिया है, आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को तुम्हें मोबाइल मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, बाकी पढ़ाई करो। और धीरे धीरे बच्चे संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन माताओं को अपने में थोड़ा मनोबल ज्यादा, बच्चों की नाराजगी को सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन होगा बहुत कल्याणकारी अगर उनको मोबाइल से छुड़ा दिया जाए। क्योंकि मैं देख चुका हूं बहुत बच्चों को, एक बच्चा एक जगह आठवीं क्लास में पढ़ता, टीवी देखने का व्यसन उसको इतना लगा हुआ, उसकी माँ ने मुझे दिखाया कि देखो टीवी से 6 इंच दूर होके देख सकता था, वो आंखें इतनी कमजोर हो गई थी, आंखें बिल्कुल ब्लाइंड होने को आई है, बस 6 इंच से आंखें आधी बंद करके देख रहा है, का सुनता नहीं है। एक ही लड़का, माँ वकील थी, कहा देखो मैं क्या करूं, मैं किसके लिए वकालत करूं, ये तो अभी लगता है ब्लाइंड हो जाएगा, सुनता नहीं है कुछ भी। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा शुरू में ही, चाहे आपको नाराजगी सहन करनी पड़े। माताएं अगर इसके लिए तैयार हों तो अपने बच्चों का कल्याण कर सकती हैं।
ठीक है, भ्राता जी के जो आंसर मिल रहे हैं, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी प्रतिक्रिया तो दें कि हमें कितने सुंदर सूत्र मिल रहे।
ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियस था ना, माताएं थोड़ी सीरियस हो गई कि अब ये बच्चों को खुश करें या क्या करें।
बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, इसीलिए जरूर
ये तीन चार बच्चे बैठे हैं लाइन में। बताओ बच्चों, मोबाइल अच्छा लगता है या पढ़ाई?
बताओ बताओ बच्चों।
नहीं, बच्चों को बताना, पीछे वाले नहीं करेंगे। तुम बताओ अकेली बैठी हो, पढ़ाई अच्छी मोबाइल अच्छा दोनों अच्छे लगते दोनों अच्छे लगते, तुम लोगों को तीनों को लड़के बैठे हैं, क्या कहा?
खेलना अच्छा लगता है। चलो ये तो अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में खेलो,
पढ़ाई भी करना और खेलना भी, नहीं तो जब बड़े हो गए लोग कहेंगे तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, थोड़ी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना आजकल खिलाड़ियों को, तो थोड़ा पढ़ना भी और खेलना भी अच्छी तरह। चलो नाइस।
जब हर तरफ से उम्मीद हो तो कैसे प्रेशर हैंडल करें उनकी उम्मीदों को पूरा करने के?
हाँ नहीं, उम्मीद तो सबकी होगी और अपनी भी उम्मीद रहती है, हर प्लेयर सोचता है मुझे गोल्ड मेडल लेना है, कंपटीशन भी हैवी होता है कहीं कहीं, बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना, अपनी शक्तियों को याद करके चलना और खेल को एंजॉय करना, प्रेशर तो रहते हैं सबकी ओर से लेकिन प्रेशर को अपने दिमाग पर लाने नहीं देना, अगर आप ये कला सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
कई सालों की असफलता मेरे मन में बैठ गई है, मैं प्रैक्टिस में अच्छा करती हूँ लेकिन मैच में बिल्कुल खराब करती हूँ, मैं खुद को बार बार विश्वास दिलाती हूँ, मेरी आत्मा बार बार कहती है तू जीत जाएगी, लेकिन मैच करते टाइम एक विचार आता है पता नहीं मैच में कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि हर बार खराब ही करती हूँ।
वही कर लो जो मैंने आपको बताया और करके देखो, 21 दिन उठते ही और सोने से पहले 21 बार लिखो, ज्यादा लिख सको तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मन स्टेबल और पावरफुल होगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत सुंदर होगा, केवल सोचने से नहीं होता है, ये लिखो आप तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, आपके ब्रेन को एनर्जी मिले और तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी खराब हुआ है उसको भूल जाओ थोड़ा, ये नहीं कि पहले भी खराब हुआ है तो अब भी खराब होगा, ऐसा सोचना नहीं है। ये याद रखेंगे आप सभी, मैंने कल भी थोड़े में बताया था आपको, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, सच्चे मन से जो संकल्प आप कई बार करेंगे वैसी एनर्जी पैदा होगी और उससे वैसा ही निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, नेगेटिव नहीं होना, ये समस्याएं तो हैं प्लेयर्स के सामने, लेकिन इन सब से पार होना है, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन भी करने लगना जाके, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आपको ईश्वरीय शक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, नर्वसनेस भी जाएगी और फिर से उम्मीद आप अपने अंदर जगा सकेंगे।
हाउ टू ओवरकम फियर लोनलीनेस एंड एंगर,
ये तीनों चीजें ऐसी हैं, सुना आपने, हमें क्रोध पर, भय पर
जी,
और तीसरा
लोनलीनेस, अकेला
लोनलीनेस, अकेलेपन पर विजय पानी है, कैसे करें? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत गहरा क्वेश्चन है, इसी पर मैं कह रहा था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि युवा वर्ग में चलते चलते ये सब चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मनुष्य का ब्रेन पहले की कंपैरिजन में काफी वीक हो चुका है, इसलिए प्रेशर को वो सहन नहीं कर पाता, तो नेगेटिव थिंकिंग होती है, लोनली फीलिंग होती है, डर पैदा होता है, डिप्रेशन होते हैं, एंग्जाइटी होती है, किसी को नींद नहीं आती है, ये समस्याएं बढ़ती हैं। इन सब से आपको बचना है, कैसे? मैं आपको 3-4 चीजें बता रहा हूं, जो लिखना चाहते हैं जिनके पास डायरी पेन है वो अवश्य लिख लें, आपको काम आए या दूसरों को काम आए सिखाने में, क्योंकि संसार में अब आने वाले समय में भय बहुत बढ़ेगा, केवल खेल तो आपके जीवन का एक फील्ड है, अपना व्यक्तिगत जीवन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो संसार में घटनाएं होती हैं उसका हमारे मन पे इफेक्ट ना हो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथी चीज है जिसको आप थोड़ा थोड़ा यहां समझ रहे होंगे, हर मनुष्य के हजारों साल का इफेक्ट भी, पास्ट हजार साल का इफेक्ट भी इस ब्रेन पर रहता है, वही भयभीत करता है। जैसे उदाहरण दो मैं आपको, एक माता ने कहीं एक्सीडेंट देख लिया, अब उसको वही स्वप्न में आने लगा बार बार, दो लोग मर गए हैं, खून पड़ा है, उसने देख लिया वो वहां थी, अब उसको भय पैदा हो गया है। दूसरी माता का उदाहरण बताऊं आपको, देखो अननेसेसरी चीजें कैसी होती हैं, आप हंसेंगे भी लेकिन ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य सुना रहा हूं। एक माता ने डेड बॉडी जाते देख लिया, अब डेड बॉडी तो होते ही है, मनुष्य मरता है, उसको तेजी से संकल्प उठने लगा मैं भी मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, माताओं को चिंता बच्चों की होती है, मैं भी मर जाऊंगी ऐसे ही मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मेरे पास आई, ये दोनों ही सत्य घटना है। अब देखो समाधान लिख लो, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, सवेरे जब भी उठो, उठना तो जल्दी चाहिए 6 बजे तक, लिखना है आपको 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस सबसे तो परिचित हो गए ना आप, निर्भय हूं, 21 बार सबकॉन्शियस माइंड में जो पिछला भय समाया हुआ है, ये वर्तमान तो केवल कारण होते हैं कि मुर्दा देख लिया, एक्सीडेंट देख लिया, ये भय जन्म जन्म का समाया हुआ रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वो नष्ट हो जाएगा। 21 दिन लिख लेना 21 बार रोज, 5 मिनट लगेगी, कोई बड़ा काम नहीं है, इससे फियर जाएगा। लोनलीनेस के लिए भी यही विधि है, सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और मेडिटेशन करना है सवेरे और शाम को। ये राजयोग मेडिटेशन आपकी सबसे सुंदर दवाई है, इसको साधारण बात न समझना, ये जीवन को सुखी बनाने वाला है। जो वीकनेसेस मनुष्य के अंदर आती हैं, लोनली फीलिंग होती है, चिड़चिड़ापन होता है, उदासी आती है, हार हो गई तो फ्रस्ट्रेशन होता है, उस सब से आपको पार करेगा फियरलेस, लोनली, तीसरा
एंगर,
एंगर जी, एंगर के लिए भी मैं ये प्रयोग आपको सबकॉन्शियस माइंड के बता रहा हूं, जो बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत सुंदर काम करते हैं। एंगर के लिए लिख लो क्रोध, सवेरे उठते ही ऐसे ही, एक साथ सब कुछ नहीं करना, 21 दिन करना है, सवेरे उठते ही मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, बिल्कुल गुड फीलिंग के साथ। अगर मान लो आप लिख नहीं सकते, ऐसी स्थिति नहीं है कि आप लिख सको, तो बैठ के शांति में कर लेना, मैं क्रोध से मुक्त हूं, पीसफुल हूं, मैं क्रोध से मुक्त हूं, पीसफुल हूं। 21 दिन में आपको लगेगा आपका क्रोध जाने लगा है, क्योंकि ये क्रोध अंदर की शक्तियों को, खुशी को, शांति को जलाता है। क्रोध से छूटना बहुत जरूरी है। और दूसरी विधि लिखने की नहीं है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। जीवन में वही व्यक्ति बहुत सुखी रहता है जो एक्सपेक्टेशंस को कम करता है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप जरूर चाहेंगे 10 लोग अप्रिशिएट करें, परंतु ये चाहो ही नहीं, ये एक्सपेक्ट करो ही नहीं, अच्छे कार्यों की अप्रिशिएशन होगी ही। लोग बोल के नहीं करेंगे, मन में करेंगे कि वाह क्या सुंदर काम किया। इसलिए एक्सपेक्टेशंस जितनी कम होंगी, खुशी सुख उतना ही ज्यादा रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो क्रोध से मुक्त होना परम आवश्यक। क्रोध जलाता है हमारे सद्गुणों को, हमारी योग्यताओं को।
कौन कौन संकल्प लेते हैं कि हम मुक्त होंगे इससे, जरा हाथ उठा करके भाई साहब को बताएं तो।
बहुत अच्छा,
बहुत सुंदर। आप अपने आप को ही बधाई दें, ताली बजा करके, कि हम एक अच्छा संकल्प यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि हम क्रोध से, फियर से, ये जो सारे वाइसेस हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को, लाइफ को एक प्रकार से खराब कर रहे हैं, उनसे हम मुक्त होने का संकल्प लें। पहला कदम तो हमारा यही है। प्रैक्टिस करते करते सहजता से इस पर जीत हासिल की जा सकती है। ब्रदर जी, एक अलग खिलाड़ियों के बीच से तो नहीं, किसी और ने भेजा है कि इंसान इंसान के रूप में पैदा होता है और जानवर जानवर के रूप में। अब इंसान पहले से ज्यादा क्यों है? क्या जानवरों को इंसान बनने का मौका नहीं मिलता? ये तो अन्याय
है। ये तो जानवरों से पूछ लेना किसी से, बनना चाहते हो क्या इंसान? और इंसान जानवर बनना चाहता है क्या? कभी पूछ लो किसी से, आप सभी पूछ लो अपने से, इच्छा भी नहीं है। ये आत्मा बीज की तरह काम करता है। चने से चना, गेहूं से गेहूं, मिलेट से मिलेट, जिसका जैसा बीज, आम के पेड़ से आम के बीज से आम का पेड़, पीपल के बीज से पीपल का पेड़, ये आत्मा भी बीज है। आप जैसे जैसे ज्ञान लेंगे, एक बड़ा रहस्य आपको बता रहा हूं जो संसार में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है और न किसी को पता है। मान लो गाय के गर्भ में मनुष्य आत्मा ने प्रवेश कर लिया, तो आपको ये सीक्रेट जानना चाहिए, गाय के बच्चे का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा के वाइब्रेशन से ही सब कुछ बनता है गर्भ में, केवल माँ बाप के जीन से नहीं। मान लो एक माँ के गर्भ में किसी पशु या पक्षी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया, तो मनुष्य के शरीर का विकास होगा ही नहीं। इसलिए आत्मा बीज है, जिसकी आत्मा है उसी के शरीर का निर्माण होगा। मुझे एक व्यक्ति आया, हंसी की बात है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, पर आपने कभी इन बंदरों के लिए सोचा? बारिश हो रही है, बेचारे भीग रहे हैं, इनका घर बना दिया जाए। मैंने कहा ये काम आपको दे देते हैं, आप सोच लो। बंदर का घर बना दोगे, तोड़ के अगले दिन बाहर आ जाएगा, बंदर घर में रहता है क्या? मैंने उसे कहा भाई, ऑर्गेनाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक लक्ष्य होता है, हमारा लक्ष्य बंदर जैसे मनुष्यों को देवता बनाना है, आपको बंदरों के लिए घर बनाना बहुत प्यार है आपका, अनुमान से हम अप्रिशिएट करते हैं, ये प्रोजेक्ट आप ले लो, सरकार भी बहुत मदद करेगी।
कई बार एक प्रश्न ये भी आता है कईयों के मन में, जो हमारे यहाँ एक चर्चा है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है, तो ये वाली जो एक बात है, उस बात को कैसे फिर समझा?
एक्चुअली ये शब्द शास्त्रों में लख 84 है, 84 लाख नहीं है, लख 84। लख माना देखना, अपने 84 जन्मों को देखो जो यहाँ आपको ज्ञान दिया जाता है। मैं दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूँ, दो वो छूट न जाए, टाइम होता जा रहा है। जिनको भी किसी भी तरह की मानसिक कमजोरी महसूस होती हो, जिनको किसी भी तरह के ऐसे रोग हो गए हों, ये केवल आपके लिए नहीं, ये जनरल बात है, जिनका इलाज नहीं संभव है, उदाहरण देता हूं, कल एक डॉक्टर का फोन बिहार से, मेरी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, नाम तो उस बीमारी का उन्होंने बताया, पर कहा इसका इलाज कोई नहीं है। देखो, उसको दूसरी चीज होती है, वो खाना खाता है और गले में ही अटकता है। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं। मैंने कहा धीरे धीरे खाना और हर पीस के बाद थोड़ा पानी भी लेना, हल्का गर्म रखना, का यही कर रहा हूं। तो देखो, ध्यान से सुन लेंगे, दो चीजें आप सबके लिए या इस संसार के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। एक है ब्रेन को एनर्जी देना, दूसरा है पानी चार्ज करके पीना। आप थक के आ जाओ खेल के या जॉब से या कोई काम करके, शाम को आपको बहुत थकान हो रही हो, थकान ब्रेन की होती है, शरीर बाद में थकता है, ब्रेन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मैं थोड़े में बता दूं आपको, ब्रेन में करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, इन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जब मनुष्य टेंशन में रहता है, जब मनुष्य प्रेशर में रहता है, जब वो चिंताओं में रहता है, जब वो खुश नहीं रहता, तो ये बहुत सारे न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। समझ गए इतनी भाषा? इसलिए शरीर में कई बीमारी आती हैं, रात को नींद अच्छी नहीं आती है, और आजकल इसी कारण से मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं। आप ब्रेन को एनर्जी देंगे, ये न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, डेड न्यूरॉन्स फिर से जागृत हो जाएंगे, और आपकी कई योग्यताएं बढ़ेंगी, आपकी कई बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। और डॉक्टर को मैंने यही बताया, ब्रेन को एनर्जी दें। अब कैसे देंगे, आप सब प्रैक्टिस करेंगे। हाथ मलिए, अपने कागज डायरी नीचे रख दो, हाथ मलते हुए तीन बार याद कर लो अंदर ही अंदर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब आपके हाथों में शक्ति आ गई है, आप जांच कर सकते हो। देखो, ऐसे छोड़ दो 2-3 इंच दूर और देखो आपके हाथों में क्या हो रहा है, झंझनाहट, वाइब्रेशंस हैं। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, ये वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब इनको सिर पे ऐसे रख दो, आंखें बंद कर लो, हाथों से ये एनर्जी ब्रेन को जाएगी, न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगी, एनर्जेटिक करेगी। 1-2 मिनट रख दो अंदाज से, फिर दोबारा रिपीट करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, फिर से रख दो। बिल्कुल शांत में बैठ के करेंगे तो आपको इसका जो एक्सपीरियंस है, जो इसके रिजल्ट हैं, वो पता चल जाएगा। 1-2 मिनट ऐसा, 10 मिनट सवेरे, 10 शाम को। आप अपने घुटनों पे रख सकते हैं जिनको घुटने दर्द हो, आप अपनी आंखों पे रख सकते हैं जिनको आंखों में तकलीफ हो, कहीं भी। मैंने ये प्रयोग बहुत जगह करा दिए, आप हैरान होंगे। हार्ट में छेद हो गया कईयों के, ये करके मास्टर सर्वशक्तिवान, राइट हैंड जहां छेद है वहां रख दिया। एक बच्चा छोटा अमेरिका का, आपको बहुत खुशी होगी जानकर, 11 दिन में उसके 2 छेद ही भर गए, वो छोटा था। ये प्रयोग हमने शुरू किया था पुणे की एक कन्या, 17 साल की, हार्ट में 2 छेद, माँ यहाँ आई, बहुत चिंतित थी, या तो मृत्यु होगी, शादी तो होगी नहीं, कैसा इसका भविष्य होगा। हमने उसकी माँ को सिखाया ये, उसने 40 दिन उसके हार्ट को ऐसे एनर्जी दी और छेद भर गए। पूना के सभी डॉक्टर्स ये जानकर बहुत खुश थे, हैरान भी थे कि जो काम हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं कर पा रहे थे वो इस माता ने कर लिया। बहुत जबरदस्त है। तीन माताएं जो बिल्कुल ब्लाइंड थी उनकी आंखें खुल गई हैं। बहुत इफेक्टिव चीज है ये, बहुत बड़ी साइंस है ये, क्योंकि न्यूरॉन्स ब्रेन के फिर से एक्टिव हो जाते हैं और बहुत कुछ होने लगता है। हार्ट को भी दे सकते हैं, हमने किडनी को दिलाई, इनको डायलिसिस होते हैं ना, किडनी फेल हो जाती है, किडनी पीछे होती है, लीवर यहाँ होता है, लीवर को राइट हैंड से बहुत बहुत फायदा होता है। तो सभी ये बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी चीज है पानी को चार्ज करके पीना। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, घूम रहा है, पानी भी घूमता है पूरे बॉडी में। ये पानी बहुत गंदा हो जाता है विचारों के कारण। पानी को यदि चार्ज करके पिया जाए तो फिर से ये पानी एनर्जेटिक हो जाएगा और हमारी कई बीमारियों को दूर करेगा। ये वैज्ञानिकों से हमने सीखा था। वैज्ञानिकों ने पानी पर वाइब्रेशंस के क्या इफेक्ट होते हैं उस पर रिसर्च की पिछले 10-15 सालों से। तो हमने इसको इस तरह ले लिया, पानी का गिलास लो आप, उस पर नजर डालो, दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बोतल को ऐसे ही कर सकते हो जैसे आप कर रही हैं, राइट हैंड में लेकर भी कर सकते हैं। मान लो कहीं ऐसी स्थिति कि आप सभा में हो और ये काम नहीं कर सकते, लोग कहेंगे पता नहीं क्या जादू कर रहे हैं, तो आप अपना राइट हैंड गिलास के ऊपर रख दो आधा मिनट और मन में संकल्प कर दो, तो हाथ से पावरफुल एनर्जी पानी को चली जाएगी। तो ये पानी चार्ज हो जाएगा और ये भी कई बीमारियों को ठीक करेगा। हम ये उनको बहुत सिखाते हैं जिनको कभी भी कैंसर हो गया है, क्योंकि कैंसर रिपीट होता है, एक भी उसका वायरस रह गया वो फिर से लाख बना देता है। इसलिए किसी का 5 साल के बाद, किसी का 7 साल के बाद कैंसर वापिस आ।
दाता जी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हमारे पास इतने सारे लोगों के अनुभव आते हैं, क्योंकि समाधान सीरियल के माध्यम से जिन्होंने भी देखा, और दाता जी ये विशेष करके सबको बताते हैं जो इन्होंने भी आपको कराया और बताया, लोगों के अनुभव सचमुच चाहे वो मानसिक हैं शारीरिक हैं, ऐसे अद्भुत अनुभव हैं कि जो लाइलाज बीमारियां या बहुत लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हैं वो भी इससे ठीक हो जाती हैं। तो हम मेडिसिन तो लें, लेकिन उसके साथ साथ यदि मेडिटेशन करें, ये सुंदर प्रैक्टिसेस करें जिसमें कोई खर्च नहीं है, सहज रूप से हम निजात प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी इसे यूज कीजिएगा और साथ ही अपने सगे संबंधियों साथियों को भी यूज कराइएगा और अपने अनुभव हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
आपको जोड़ दूं, बुखार इस चार्ज पानी से बहुत जल्दी ठीक होता है। बुखार, मैंने प्रयोग बुखार पे शुरू किए थे अब से 20 साल पहले से, बहुत गुड रिजल्ट। ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी बुखार के पेशेंट ने चार्ज पानी पी लिया और ठीक ना हुआ हो। कई तो आधे आधे घंटे में बुखार से मुक्त हो गए, बहुत सुंदर रिजल्ट हुए हैं। हाँ, 7 बार।
तो ऐसे सुंदर अनुभव आप भी जरूर कीजिएगा। सचमुच कितने सुंदर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं अपने रोगों से मुक्त होने के, और ये बहुत बहुत आवश्यक थे जो भ्राता जी ने बीच में हम सबको बताया, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी चीजें हमें अब सामने देखने को मिलती हैं, अपने आसपास दिखाई देती हैं, और लोग इससे बहुत ज्यादा त्रस्त भी होते हैं। इनका इलाज अब आपके हाथ में है, आप जरूर इसे यूज कीजिएगा। प्रदा जी, कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं। मैं बीके में मैंने सीखा है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सभी से प्यार से मिलिए, खुश होकर मिलिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने वर्क प्लेस में जब इस प्रकार से लोगों के साथ मिलती हूँ तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट ही मुझे ये देखने को मिलता है, लोग इसे गलत समझते हैं, कैसे इसे हैंडल किया जाए?
मन को खुश रखिए, मन में मुस्कुराइए, बाहर ज्यादा मुस्कुराएंगे तो दुनिया बड़ी खराब है, सावधान। ठीक प्रश्न पूछा। मन आनंदित हो, आपका चेहरा चमकता हो, स्थूल रूप से जैसे कल गिरीश भाई बताए थे ऐसे वैसे करके वो आप करेंगे तो लोग मजाक करेंगे ना, उसकी जरूरत नहीं। मन को आनंदित कर लीजिए, आपको बहुत सुंदर ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं, इसको प्रयोग कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे आप ज्ञान लेंगे आपको स्वमान का पता चलेगा। ये भी स्वमान है कि मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं। स्वमान के अभ्यास करने से आपका गहरा इफेक्ट दूसरों पर पड़ेगा, वो और किसी तरह से आपको लेंगे नहीं।
मेरी माँ विगत 2 वर्षों से पैरालाइज्ड है और बहुत दुखी रहती हैं। आपने जो अभ्यास बताया क्या वो किए जा सकते हैं?
ब्रेन को एनर्जी दी जाए उसके, और 1 घंटा उसके लिए कोई राजयोग मेडिटेशन करे। अब वो मुक्ति चाहती है या जीना चाहती है ये उससे पूछ लेना। मुक्ति के लिए भी योग अभ्यास किया जा सकता है, मुक्ति समझ गए ना, देह से मुक्ति। और वो ठीक ठाक रहे, मन खुश रहे उसका, इसके लिए भी योग अभ्यास किया जा सकता है।
मैं मास्टर लेवल पर वर्ल्ड एवं नेशनल टेबल टेनिस की प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है जो मैं चाहती हूँ।
वही जो मैंने बताया, सवेरे उठकर 7 बार रोज संकल्प करो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप देखो तो ऐसे इन संकल्पों का जादू, और जब खेलने जाओ तब भी ये याद करते चले जाओ, फिर खेल पे फोकस करो, बहुत सुंदर रिजल्ट होंगे।
मैं ध्यान लगाना चाहती हूँ पर ध्यान नहीं लगता। कितने ऐसे हैं जो ध्यान लगाते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, जरा तो
सभी होंगे वो तो
तो लगभग सभी का ये प्रश्न।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देखो बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। और इस ध्यान नहीं है ये कुछ और है। मेडिटेशन में हमें अपने विचारों को बंद नहीं करना होता बल्कि सुंदर विचार क्रिएट करने होते हैं। अगर आप विचारों को बंद करना चाहेंगे तो विचार भटकेंगे और आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए लोग योग कर नहीं पाते। टेक्निक सीखते जाएंगे और बहुत सारी सीखेंगे वहाँ सेंटरों पर जाकर भी, फिर इसमें सफलता हो जाएगी।
16 साल पहले किसी एक शख्स को ना पाने की हताशा के कारण मेरा पूरा जीवन ही जैसे नेगेटिव हो गया, एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू हो गईं। अब जिंदगी में सब ठीक है, मैं अपनी खुशी को वापस पाना चाहता हूँ, दवाइयों से मुक्त भी होना चाहता हूँ।
मैंने बताया ना राजयोग और ये मास्टर सर शक्तिवान लिखना और ब्रेन को एनर्जी देना। और इसमें एक चीज और है जो बहुत सूक्ष्म है, सभी को कर लेनी चाहिए 7 दिन तो जरूर। मैंने जिनको भी पिछले 1000 साल में कष्ट दिया हो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, दैट्स ऑल, इतना ही। इसको क्षमा याचना कहते हैं। तो पास्ट के जो बुरे वाइब्रेशंस आपको आ रहे हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे और जीवन में नई उम्मीदें जगेंगी। जिनको सफलता नहीं मिल रही चाहे खेल में चाहे किसी भी फील्ड में, वो 21 दिन ये काम भी कर लें, इतना ही करना बस, आधे मिनट का भी नहीं है, 10 सेकंड का है। मैंने 1000 साल में जिनको भी कष्ट दिया हो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, बस, बहुत गुड रिजल्ट मिलेंगे आपको।
एक मानसिक समस्या जो लगातार बढ़ती जा रही है लोगों में वो ओवरथिंकिंग की है।
वही, उस सब का उत्तर मैंने दे दिया। लिखेंगे मास्टर सर्व शक्तिवान, ब्रेन को एनर्जी देंगे तो सभी मानसिक रोगों की ये दवाई हो जाएगी। आपको दवाई की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मान लो आपको भय है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत भय है, एंजाइटी है, दवाई दो, तो उनके पास इसकी दवाई होती नहीं, वो दवाई देंगे कि आप सोचो ही नहीं कुछ, डल, ब्रेन डल हो जाएगा और आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो विधि आपको बताई गई इनको आप स्ट्रिक्टली कर लो, 21 दिन ही कर लो कम से कम, ज्यादा समस्या हो 3 मास कर लो और इनसे मुक्त हो जाओ। बस वही समाप्त करें
जी। बस एक दो प्रश्न है, बस मैं ओलंपिक की रेस में हूँ, ये मेरे जीवन का बड़ा स्वप्न है, लेकिन कई बार जो कोच हैं उनका अहम और कई बार जो फाइनेंशियल इश्यू हैं वो कारण बन जाते हैं एक व्यवधान के रूप में।
किसी कोच का अहम आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बहुत लोग जो ऊंचे लेवल पर गए हैं वो कभी बहुत गरीब हुआ करते थे। आप हिम्मत ना हारना, हिम्मत के आगे सब कुछ सहज हो जाता है। और आप जरा ये राजयोग मेडिटेशन करके तो देखो, आपको शिव बाबा की मदद मिलेगी, उसकी दुआएं मिलेंगी और बहुत सारी चीजें आपकी सहज हो जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करना है आपको, फिर देखो सब मार्ग आपका कैसे क्लियर होता है। ओम शांति।
चलिए, प्रश्न आपके बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ जो उत्तर आपको प्राप्त हुए हैं सचमुच बहुत ही गहन हैं, जो बहुत आवश्यक थे, मन से जुड़े हुए, तन से जुड़े हुए, आपके परफॉर्मेंस से जुड़े हुए और साथ ही साथ अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने को लेकर के अन्य सभी प्रश्न भी मिलते जुलते ही थे। हम सभी जोरदार तालियों से आदरणीय भ्राता जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे मन के व्यवधानों समस्याओं का सुंदर समाधान किया है। हमारी आप सबके लिए यही शुभकामना है, शुभ भावना है कि आप हर समस्या से मुक्त रहें, आनंदित जीवन जिएं और सफलता के शिखर पर आरूढ़ होकर अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चलें और परमात्मा पिता का भी शुक्रिया अदा करेंगे।
सर्वशक्ति